नमस्कार, स्पोर्ट्स कैन के आज के अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं शक्ति सिंह और श्रोताओं तमाम खेल खबरों पर विस्तार से चर्चा के लिए स्टूडियो में मौजूद हैं वरिष्ठ खेल विशेषज्ञ विजय लोकपल्ली। विजय, आपका स्वागत है।
नमस्कार।
सबसे पहले नजर डालते हैं आज की स्पोर्ट्स हेडलाइंस पर। सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की पुरुष डबल्स जोड़ी ने थाईलैंड ओपन बैडमिंटन में रजत पदक जीता। आईपीएल क्रिकेट में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हराया। दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच मुकाबला जारी। भारत ने एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में 1 रजत और 9 कांस्य पदक के साथ अपने अभियान का समापन किया और देश के विभिन्न शहरों में संडे ऑन साइकिल का 74वां संस्करण आयोजित किया गया। थाईलैंड ओपन बैडमिंटन के पुरुष डबल्स में सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी ने रजत पदक अपने नाम किया। फाइनल में इस भारतीय जोड़ी को इंडोनेशिया के लियो रॉली कॉर्नेडो और डैनियल मार्थिन से 12-21, 23-25 से हार का सामना करना पड़ा। एक रिपोर्ट।
भारत की शीर्ष पुरुष डबल्स जोड़ी सात्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी को थाईलैंड ओपन में रजत पदक से संतोष करना पड़ा। आज खेले गए फाइनल मुकाबले में शुरुआती गेम में सात्विक और चिराग लय हासिल करने के लिए झूंझते दिखाई दिए और इंडोनेशियाई जोड़ी ने पहले गेम को 21-12 से अपने नाम किया। भारतीय जोड़ी ने दूसरे गेम में जोरदार वापसी की और गेम को आखिर तक खींचा, जहां लगातार 5 चैंपियनशिप पॉइंट बचाने के बाद वे आखिरकार 23-25 से हार गए। इससे पहले सात्विक चिराग ने सेमीफाइनल में मलेशिया के गुह सेफेई और नूर इजुद्दीन को हराकर 2026 सीजन के अपने पहले फाइनल में जगह बनाई थी। सात्विक और चिराग तीसरी बार थाईलैंड ओपन के खिताबी मुकाबले में पहुंचे थे। इससे पहले वे साल 2019 और 2024 में इस खिताब पर कब्जा जमा चुके हैं। वैष्णवी, स्पोर्ट्स कैन।
शायद उतनी खुशी नहीं हुई होगी जितनी खिताब जीतने पे होती, लेकिन कह सकते हैं कि परफॉर्मेंस के आधार पे एक शानदार टूर्नामेंट और एक शानदार प्रदर्शन भारतीय स्पेयर की तरफ से।
शक्ति, ये तो जीतना चाहिए था। दो कारण, एक तो फॉर्म में थे और टॉप सीडेड हैं, सो बस का मतलब कि जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनको भी उम्मीद थी ये जो है ये जोड़ी जीतेगी और उनकी तैयारी भी अच्छी थी। हालांकि टॉमस कप में ब्रॉन्ज मिला, बट फिर भी इस वक्त मैं कहूँगा कि एक अच्छी बैडमिंटन खेल रहे हैं दोनों। पर हाँ, आप इस जो क्रूशियल मुकाबला था उसमें पीछे रह गए।
जी, पीछे रह गए, क्योंकि हमने इस जोड़ी के साथ देखा पिछला वर्ष भी जिस तरह का रहा, एक फाइनल था खाली, लेकिन इंजरीज ने एक बहुत बड़ा फैक्टर यहाँ पे एक रोल अदा किया है, क्योंकि चिराग शेट्टी या साईराज में से कोई भी एक खिलाड़ी जब इंजर्ड होता है तो फिर पेयर बिगड़ता है और वो टीम का बैलेंस कहीं ना कहीं जाता है। तो कह सकते हैं कि इंजरी जो पिछले साल हुई इन खिलाड़ियों के साथ लगातार, जिसने साथ नहीं छोड़ा, वो कहीं ना कहीं अभी भी लय तलाशने में दिक्कत कर रही है।
हाँ, पर वापसी तो हो ही गई थी। टॉमस कप में परफॉर्मेंस अच्छा था, तालमेल भी अच्छा था। पर ये आपने बात सही कही कि जब आप इंजरी से वापस आते हैं तो आपके मन में एक वो डर रहता है कि फिर से इंजर ना हो जाऊं, क्योंकि उस लेवल पे इंजर्ड होना और इंजरी से वापस आना बहुत कठिन होता है।
जी बिल्कुल, और ये तो डबल्स की बात रही। अगर हम सिंगल्स की बात करें इसी प्रतियोगिता में, पीवी सिंधु शुरुआत में बहुत अच्छी लय में नजर आई, एक अच्छी शुरुआत की थी, लेकिन एक अच्छे एंड में कन्वर्ट नहीं कर पाई, चाहे वो लक्ष्य सेन हो सेमीफाइनल तक पहुंचना और फिर बाहर होना। सिंगल्स में वो किताबों का सूखा काफी हद तक नजर आता है, क्योंकि एक दौर आया बीच में भारत में जहां भारतीय खिलाड़ी लगातार पार्टिसिपेट करते थे और टाइटल्स लेकर के आ रहे थे, लेकिन अब टाइटल्स के नंबर धीरे धीरे कम होते जा रहे हैं और पूल तो बड़ा है लेकिन वो मेडल्स में कन्वर्ट होता नहीं दिख रहा है।
जी हाँ, डबल्स में आप देखिए ना, 2024 में जीते थे यही जोड़ी, और आपने ये बात सही कही, सिंधु तो बहुत निराश कर रही है। उनको अपने गेम के बारे में डिसाइड करना पड़ेगा कितना और खेलना चाहेंगी वो, क्योंकि बार बार हारना मतलब उनके रेपुटेशन के लिए भी अच्छा नहीं है, क्योंकि हमने देखा है कि भारतीय महिलाओं में अगर आप देखें, नेहवाल और सिंधु, इन्होंने इंडियन बैडमिंटन को एकदम कहां से कहां पहुंचाया है। फिर जब वो शुरुआत में हार जाती है पहले दौर में दूसरे दौर में, तो बहुत खराब लगता है। और लक्ष्य सेन तो खिलाड़ी हैं इसमें जो पिछले मान लीजिए 10 साल में सबसे बेहतरीन खिलाड़ी उभर के आए हैं। ऑल इंग्लैंड जीतना चाहिए था, ओलंपिक में चूक गए, पर वो यंग हैं अभी, उनके साथ उम्र है, सो आप उम्मीद रख सकते हैं इस सीजन में अपनी लय पालेंगे।
जी बिल्कुल, हमने सीनियर्स खिलाड़ी की बात की, अब कुछ बात नए उभरते खिलाड़ियों की भी हो, जहां भारत की श्रेयांशी वल्ली शेट्टी ने चीन के बाउजी में चाइना मास्टर्स बैडमिंटन के महिला सिंगल्स में रजत पदक जीता है। इस सुपर 100 प्रतियोगिता के फाइनल मुकाबले में श्रेयांशी को चीन की आन क्यू युआन से सीधे गेम में 14-21, 6-21 से हार का सामना करना पड़ा। तो एक अच्छा टूर्नामेंट सुपर 100 टूर्नामेंट है बहरहाल, लेकिन इस युवा खिलाड़ी के लिए काफी कुछ देने देके जाएगा यहाँ से?
सीखा होगा बहुत, क्योंकि आप ये एक समझ लीजिए शक्ति कि वर्ल्ड बैडमिंटन में चाइनीज हमेशा स्ट्रांग होते हैं, चाहे किसी भी लेवल पे हो, जूनियर हो, सीनियर हो, सिंगल हो, डबल्स हो, और यहाँ पे तो बहुत कुछ सीखने को मिलेगा, नो डाउट।
जी बिल्कुल, काफी कुछ सीखने को मिलेगा। और एक जो नई पौध इंडियन बैडमिंटन की यहाँ पे खड़ी हो रही, जिसमें उन्नति शर्मा है, जिसमें उन्नति हुड्डा, तन्वी शर्मा, ऐसे उन्हीं सूची में अपना नाम दर्ज कराती हुई श्रेयांशी भी। आईपीएल क्रिकेट में आज धर्मशाला में रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु ने पंजाब किंग्स को 23 रन से हरा दिया। बेंगलुरु के 223 रन के लक्ष्य के जवाब में पंजाब 20 ओवर में 8 विकेट खोकर 199 रन ही बना सकी।
धर्मशाला में आज क्वालिफिकेशंस का औपचारिक मार्ग हासिल करने की उम्मीद लिए रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु का सामना पंजाब किंग्स से हुआ। पहले बल्लेबाजी करने उतरी बैंगलोर ने वेंकटेश अय्यर की 40 गेंदों पर नाबाद 73 रन और विराट कोहली के 37 गेंद पर 58 रन की बदौलत 4 विकेट खोकर 222 रन का विशाल स्कोर बनाया। हरप्रीत बरार ने पंजाब के लिए सर्वाधिक 2 विकेट लिए। 223 रन का पीछा करने उतरी पंजाब किंग्स की शुरुआत अच्छी नहीं रही और टीम ने 19 रन के स्कोर पर 3 विकेट खो दिए। इसके बाद भी विकेट गिरने का सिलसिला जारी रहा। टीम के लिए शशांक सिंह ने 27 गेंदों में 56 रन बनाए, जबकि मार्कस स्टोनिस और कूपर कॉनली ने 37-37 रन का योगदान दिया। लेकिन ये पारी पंजाब को विजय लक्ष्य तक पहुंचाने में नाकाम रही। आरसीबी के लिए रसिक डार ने 3 और भुवनेश्वर कुमार ने 2 विकेट अपने नाम किए। ये पंजाब की सीजन लगातार छठी हार है, जबकि आरसीबी ने 13 मैचों में 9 जीत के साथ अंक तालिका में शीर्ष स्थान हासिल कर लिया है और औपचारिक तौर पर प्लेऑफ का टिकट कटा लिया है। आकर्षिता सिंह, स्पोर्ट्स स्कैन।
दिन का दूसरा मुकाबला दिल्ली में दिल्ली कैपिटल्स और राजस्थान रॉयल्स के बीच जारी है। ताजा समाचार मिलने तक राजस्थान रॉयल्स ने 13वें ओवर में 2 विकेट पर 145 रन बना लिए हैं। दिल्ली ने टॉस जीतकर गेंदबाजी का फैसला किया था, लेकिन अधिक बात की जाए पहले मुकाबले पे, ये जो प्लेऑफ की 4 सीटें हैं इस पे एक सीट पे रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु बैठ गई है, अब 3 के लिए दावेदारी है,
जिसमें मुझे लगता है हैदराबाद और गुजरात को आप गिन सकते हैं, मतलब रेस में तो है ही हैं, और राजस्थान को भी जीतने पड़ेंगे दोनों मैच। लेकिन आप शक्ति आप सोचिए कि पंजाब इतनी बेहतरीन शुरुआत और एकदम जो है जो डिक्लाइन आया है कि आप 6 मैच हारते हैं लगातार उस लेवल पे, जब आपके फैंस आपसे उम्मीद रख रहे हैं और टीम की कॉम्बिनेशन भी अच्छी है, इसमें कोई शक नहीं, आपके पास एक बहुत अच्छा कप्तान है, पर कैसे एक्सप्लेन करोगे कि ये 6 मैच लगातार आप हारते गए?
जी बिल्कुल, और जिस तरह की शुरुआत हुई थी, पंजाब सीजन में फेवरेट्स मानी जा रही थी, आपने 6 मैच खेले, एक बारिश के कारण धुला, लेकिन 5 में आपकी जीत और अब 6 हार, कहीं ना कहीं टीम के प्रदर्शन पे अब सवाल उठने खड़े हो गए हैं। और धीरे धीरे, जब तक आपकी 5 हार थी आप टॉप 4 में थे, लेकिन आज आपने वो टॉप 4 का स्थान भी गवा दिया है। आज की अभी के मुकाबले की बात की जाए, दिल्ली कैपिटल्स डू और डाई मैच है, नो डाउट। राजस्थान रॉयल्स शुरुआत से एक ऐसी टीम रही है जो सितारों को नहीं लेती है, सितारे बनाती है, एक टीम से बढ़कर एक अकेडमी है, और युवा खिलाड़ी जिस तरह का प्रदर्शन कर रहे हैं, ये टीम उस रेस में कितनी करीब और कितनी दूर पाई जाती है जो प्लेऑफ के लिए जारी है?
प्लेऑफ के लिए तो रेस में तो है राजस्थान, इसमें कोई दो राय नहीं। जैसे हमने कहा कि अगर वो जीत जाती है अपने मैचेस तो टॉप 2 में आ जाएगी, उम्मीद रख सकते हैं। और फिर वही बात, उनके पास बैटिंग, बड़ी एक्सप्लोसिव बैटिंग है राजस्थान के पास, सूर्यवंशी जैसे खिलाड़ी है जो अपने दम पे निकाल देता है मैच, और कॉन्फिडेंस बहुत ऊपर है टीम का। सो मैं समझता हूँ ये बहुत ही क्रिटिकल मैच होगा दिल्ली के साथ।
जी बिल्कुल, और दिल्ली भी उम्मीद करेगी कि इतना जल्दी अपने सफर को समाप्त ना होने दिया जाए और इस मुकाबले में जीत दर्ज कर अपनी संभावनाओं को आगे के लिए जिंदा रखा जाए। अहमदाबाद के गांधीनगर में एशियाई भारोत्तोलन चैंपियनशिप में भारत ने 1 रजत और 9 कांस्य पदक के साथ अपने अभियान का समापन किया। एक रिपोर्ट।
प्रतियोगिता के अंतिम दिन आज भारत के लवप्रीत सिंह ने पुरुषों के 110 किलोग्राम से अधिक भार वर्ग में 5वां स्थान हासिल किया। उन्होंने कुल 386 किलोग्राम का भार उठाया, जिनमें से स्नैच में 174 किलोग्राम और क्लीन एंड जर्क में 212 किलोग्राम का भार शामिल था। चैंपियनशिप में भारत के लिए पदकों की शुरुआत कोमल कोहर ने महिला वर्ग के 48 किलोग्राम के क्लीन एंड जर्क और कुल भार में 2 कांस्य पदक जीतकर की थी। इसके बाद ज्ञानेश्वरी यादव ने महिलाओं के 53 किलोग्राम में स्नैच में रजत और कुल भार में कांस्य पदक अपने नाम किया था। हरजिंदर कौर ने महिलाओं के 69 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य पदक अपने नाम किया था, जबकि कल संजना ने 77 किलोग्राम भार वर्ग में स्नैच, क्लीन एंड जर्क और कुल भार में 3 कांस्य पदक जीते थे।
पुरुष वर्ग में अजीत नारायण भारत के लिए पदक जीतने वाले एकमात्र भारतीय खिलाड़ी रहे। उन्होंने पुरुषों के 71 किलोग्राम क्लीन एंड जर्क और कुल भार में 2 कांस्य पदक जीते। जया भारती, स्पोर्ट्स स्कैन।
एक बहुत लंबे इंतजार के बाद गुजरात को भारत को मेजबानी मिली थी, क्या इससे प्रदर्शन कुछ और बेहतर हो सकता था? बहुत अच्छा प्रदर्शन रहा है भारतीय खिलाड़ियों का, 10 पदक हमारी झोली में आए। मीराबाई चानू नहीं थी इस दल का हिस्सा, इतनी बड़ी खिलाड़ी, लेकिन उसके बाद भी क्या, क्योंकि होम कंडीशंस थी, चीज़ें काफ़ी हद तक आपके लिए पक्ष में थी, कई बड़े देश कंपटीशन से बाहर थे, क्या और बेहतर की उम्मीद थी?
आपको एक चीज़ ध्यान रखनी पड़ेगी कि ईरान जो सुपर हाउस पावर हाउस माना जाता है वेट लिफ्टिंग का, उनकी 2 ही एंट्री थी जिन कारणों से मालूम है आपको वॉर सिचुएशन। पर भारत ने 10 मेडल जीत के अच्छा ही किया है, कम से कम आप आगे देख सकते हैं गर्व के साथ। और अजीत ने तो मतलब बहुत समय के बाद 2011 के बाद भारत को एक जो है मेडल दिलाया है। और मैं समझता हूँ लवप्रीत का जो 5वां स्थान है वो आप अगर फील्ड देखेंगे जो उनका ग्रुप था उसमें बहुत अच्छा है, बहुत सराहनीय है। और मैं ये आगे के लिए आपकी अच्छी तैयारी है जो जिससे उम्मीद की जा रही थी। आप देखिए मीराबाई नहीं थी शुरू में, एक बड़ा एक झटका लगा था भारत को, पर जो उम्मीद थी बाकियों से वो उस पर पूरे खरे उतरे।
जी बिल्कुल, उम्मीदों पे खरे उतरे। और एक सकारात्मक संदेश इस दिशा में भी देखा जा सकता है कि काफी युवा खिलाड़ी हूँ, जैसे कोमल का जिक्र किया जाए, बेहद कम उम्र की खिलाड़ी है, मीराबाई की जगह पर आई और एक पदक लेकर के जा रही है, 2 पदक, और कई नेशनल रिकॉर्ड्स हमने टूटते हुए देखे हैं इस प्रतियोगिता में भारतीय खिलाड़ियों की तरफ से। तो कह सकते हैं कि आने आने वाले जो भी टूर्नामेंट्स हैं उसमें के लिए एक बेहतर उम्मीद जगी है इस आयोजन से।
बिल्कुल जगी है। और देखिए ये सब ओवरनाइट नहीं है, तैयारी हो रही है, जा जाके बहुत इनकी ट्रेनिंग होती है, बाहर भी जाके कैंप करते हैं, भारत में इतनी मेहनत करते हैं। तो मैं समझता हूँ ये बहुत अच्छा संकेत है और आप उम्मीद रख सकते हैं इन खिलाड़ियों से।
जी बिल्कुल, उम्मीद होगी आने वाले बड़े आयोजनों में जहां पे ये खिलाड़ी कुछ और पदकों के साथ देश का नाम रोशन करते हुए नजर आएंगे। देश भर में फिटनेस के प्रति जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से आज फिट इंडिया अभियान के अंतर्गत संडे ऑन साइकिल के 74वें संस्करण का आयोजन किया गया। इस अवसर पर देश के विभिन्न शहरों में लोगों ने साइकिल चलाकर फिटनेस और पर्यावरण बचाने का संदेश दिया। दिल्ली में जीएसटी और कस्टम विभाग के अधिकारियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। जीएसटी के अतिरिक्त निदेशक और फिट इंडिया के ब्रांड एम्बेसडर नरेंद्र कुमार यादव ने लोगों से अपील करते हुए कहा कि आपको जहां भी जब भी मौका मिले साइकिल जरूर चलाएं।
हम लोग हर संडे इसे ऑर्गेनाइज करते हैं। साइकिल आज के समय में बहुत इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि जहां हमें न केवल फिटनेस पे ध्यान देना है बल्कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपील की है कि हमें ईंधन भी बचाना है, तो साइकिल न केवल हमारे पर्यावरण के लिए अच्छी है बल्कि देश की इकोनॉमी के लिए भी अच्छी है। तो मैं आप सबसे अपील करता हूँ जब भी मौका मिले, जहां भी मौका मिले, साइकिलिंग जरूर करें।
तो नए नए आयाम खुलते हुए नजर आ रहे हैं साइकिल से कि पर्यावरण, इकोनॉमी और फिटनेस एक साथ कई सारे निशानों पे तीर साधती हुई है साइकिल।
जी हाँ, और शक्ति मुझे तो याद आता है समय कि जब बहुत साइकिलें देखने को मिलती थी सड़क पे, पब्लिक ट्रांसपोर्ट इतना अच्छा नहीं था लेकिन लोग साइकिल करते थे। जैसे अभी हमने सुना फिटनेस के लिए ज़रूरी है, पोल्यूशन कंट्रोल के लिए बहुत ज़रूरी है, तो एक अच्छी आदत है और ये तो बहुत लोकप्रिय हो गया है। जो संडे साइकिलिंग है पूरी भारत में बहुत ही लोकप्रिय है ये।
जी बिल्कुल, और संडे की सुबह सुबह शहर की सड़कों पे लोग अपनी नींद और बिस्तर को छोड़ के साइकिल लेके उतरते हैं और अच्छे संदेश के साथ अपनी सेहत के लिए भी कुछ बेहतर करते हुए नजर आते हैं। अब बात करते हैं स्क्वाश की, जहां तीसरी नेशनल डबल स्क्वाश चैंपियनशिप में विलवन सेंथिल कुमार और जोशना चिनप्पा ने दोहरी जीत हासिल की। उन्होंने अपने अपने जोड़ीदारों के साथ कल पुरुष और महिला डबल्स के खिताब जीतने के बाद एक साथ मिक्स्ड डबल्स का खिताब भी अपने नाम किया। टॉप सीड वाली जोड़ी ने अभय और सेंथिल कुमार ने लगातार तीसरी बार मेंस डबल्स का खिताब अपने नाम किया, जबकि सेंथिल कुमार और जोशना ने मिक्स्ड डबल्स का खिताब जीता और जोशना राधिका ने महिलाओं के महिला डबल्स का खिताब अपने नाम किया। और श्रोताओं, समय हो रहा है आपसे विदा लेने का, कल इसी समय आपसे फिर मुलाकात होगी तमाम खबरों के साथ। विजय, आप स्टूडियो में आए और तमाम खेल खबरों पर आपने हमसे बातचीत की, इसके लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।
धन्यवाद।
और श्रोताओं, इसी के साथ मुझे और स्पोर्ट्स कैन की पूरी टीम को अनुमति दीजिए। नमस्कार।